मेरे बहुत बहुत प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 29 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर के लिए मैंने जो विषय चुना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है और सच पूछे तो बहुत ही रोचक भी है और मुझे लगता है कि बहुत से तथ्य आपको ज्ञात भी होंगे, आप जानते होंगे। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जो तथ्य आपको मालूम होंगे हो सकता है कि वो काफी बिखरे बिखरे हुए से हों। दूसरी बात यह भी कि जब आप उनको समेटने की कोशिश करेंगे तो उसमें से कुछ चीज बातें छूट भी सकती हैं। और तीसरी बात यह कि जब आप उनको समेट लेंगे तो हो सकता है कि उसमें जो एक प्रायोरिटीज होनी चाहिए वो आप निर्धारित न कर सकें कि इसमें से कौन सी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है या कोई बिल्कुल चर्चा करने के लायक ही नहीं है। ये सारे संकट आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन के बाद जो आंसर राइटिंग होती है उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप देखते हैं कि सिविल सर्विस में स्ट्रेट क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं जाते, कम से कम जनरल स्टडीज मेंस के सेकंड थर्ड पेपर में तो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते ही नहीं है। यहां तक कि फर्स्ट पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस सीधे स्ट्रेट होते हैं, बाकी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम पढ़ रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, चीजें हमारे दिमाग में है भी, लेकिन मुश्किल यह होती है कि जब आंसर लिखना होता है तब हमें वो चीजें याद नहीं आती, बहुत सी चीजें छूट जाती हैं। और जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो फिर अपने बाल नोचते हैं कि अरे यार, ये उस समय क्यों नहीं याद आया, देखो देखो ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम था। अब दिमाग है उतने ज्यादा प्रेशर में, उसे 20-20 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो याद न आना एक स्वाभाविक सी बात है, उसको लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। हाँ, इस बात को लेकर के जरूर परेशान आप रहिए कि ऐसा न हो कि बहुत सी चीजें भूल जाए, या अगर थोड़ी सी ही चीजें भूल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाएं। बस इससे ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमारा जो एक रिपेयरिंग मेजरमेंट होगा, एक तरीका जो होगा, मेजर्स जो होंगे, उपाय होंगे, वो केवल इसी बात के होंगे। हम सोचे कि हम भूलेंगे ही नहीं तो ये तो सोचना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए क्या फायदा है कोशिश करने की। हाँ, उस स्थिति में हम नहीं भूलते जब स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस की तैयारी तो स्ट्रेट रूप में की जा सकती है, तो हमको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके फिर चीजें जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे दिमाग में भरा हुआ है, हमने रटा हुआ है, दिमाग में उसकी इमेजेस हैं, उसके प्रिंट छपा हुआ है हमारे दिमाग में, जो हमारे दिमाग में छपा हुआ है उसको हम कॉपी में छाप देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि सिविल सर्विस का पैटर्न ये नहीं है इसीलिए वो संभावना खत्म हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? हम यही करेंगे मित्रों, उसका जो उपाय होता है कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उन्हें हम एक जगह याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं। रिवाइज करने से दिमाग पर वो धूल नहीं जमती है, उसकी ताजगी बनी रहती है, और जब एग्जामिनेशन में वो प्रश्न पूछा जाता है तब हम फिर आसानी के साथ उसका आंसर लिखने की स्थिति में आ जाते हैं, हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, भूलने का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और यही हमको दूसरे अपने कॉम्पिटिटर की दृष्टि से थोड़ा सा माइलेज दे देता है, और यही सिविल सर्विस में आगे निकल जाने का रहस्य है और कुछ भी दूसरा नहीं। तो मित्रों, आज के लिए इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने जो विषय चुना है वो है ब्लैक मनी, काला धन। और मजेदार बात है कि जो काला धन है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो, ईयर रहा हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इस टॉपिक पर तैयारी न करे। मैं तो 1980 की बात बता रहा हूं, 1980 में भी हम लोग ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट पर तैयारी करते थे, इधर से मटेरियल जुटाते थे, उधर से मटेरियल जुटाते थे, यहां से आंकड़े लो, वहां से आंकड़े लो, सरकार की ये रिपोर्ट लो। आज भी हम वो कर रहे हैं, और ये नहीं कि हम बेकार का काम कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए तो चाहे प्री एग्जाम हो, मेन्स हो, काले धन को लेकर के कुछ न कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ ही लिया जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, अच्छे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में आ जाते हैं। क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए, तैयारी तो हमें पूरी ही करनी पड़ेगी। तो मित्रों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो सदाबहार टॉपिक है, हमेशा आपके काम आता रहेगा। तो बट नेचुरल है कि अब मैं जिस डेट पर आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, इसमें वहीं तक की बातें समेटी गई हैं, आगे की बातें आपको अपडेट करते चलना होगा। तो दोस्तों, आइए अब काले धन पर बात करते हैं। और काले धन पर बात करने से पहले मैं इस बात पर बात नहीं करने जा रहा हूं कि काला धन क्या है। इस तरह की एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं रहे होंगे मुझसे, आप जानते हैं, उस पर हम बात नहीं करते। हम तो ये इसमें बात करेंगे मूलतः फ्रेंड्स कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं। और जब मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो मैं अभी की सरकार की बात कर रहा हूं, जिसके अभी 3 साल लगभग पूरे हुए हैं, कि 3 साल के दौरान सरकार ने काले धन के खिलाफ कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से कदम उठाए हैं। हम सिर्फ अपनी बात को वहीं तक सीमित रखेंगे, अदरवाइज फिर चीजें बिखरने लगती है। फ्रेंड्स, अब हम याद करते हैं इस सरकार के बनने की स्थिति को लेकर के, कि जब चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना चुनाव अभियान छेड़ा। और ये जो पूरा का पूरा चुनाव अभियान था, नो डाउट ट्रांसपेरेंसी को लेकर के था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर के था, लेकिन उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट था वो था काला धन, कि हम काले धन को खत्म करेंगे और भारत के बाहर, अपने देश के बाहर जो भी हमारे यहां का काला धन इकट्ठा है, जमा है, उसे हम देश में लेकर आएंगे। और सच पूछिए तो जब हम भ्रष्टाचार की बात भी करते हैं ना, तो भले ही वो शब्द है करप्शन, लेकिन करप्शन है क्या, अपने आप में क्या, कौन सा एक्शन है? मतलब करप्शन एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसी गतिविधि है जिससे काला धन जनरेट होता है। फिर चाहे इस करप्शन में राजनेता शामिल हो, नौकरशाह शामिल हो, चाहे वो उद्योगपति शामिल हो, चाहे आम आदमी शामिल हो, आम जनता शामिल हो, है यही धन का इलीगल, अवैधानिक लेन देन। एक तो अवैधानिक लेन देन और दूसरा उस धन पर टैक्स न चुकाया जाना, दैट्स ऑल। तो करप्शन के केंद्र में सच पूछे तो काला धन ही है। तो इसीलिए फोकस किया, मतलब अब चुनाव अभियान में उन्होंने काला धन को फोकस किया। तो दोस्तों, आपको यह भी मालूम है कि जैसे ही सरकार बनी और जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उस पहली कैबिनेट बैठक में ये कम बड़ी बात नहीं थी कि सरकार ने जो निर्णय लिया था वो एसआईटी के गठन का निर्णय लिया था, कि काले धन पर विशेष जांच दल, एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये उच्चतम न्यायालय पहले कह चुका था, सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए पहले कह चुका था कि सरकार ऐसा करे, लेकिन उससे पहले की जो सरकार थी उसने इस पर कोई कदम नहीं उठाया था। और अभी की सरकार जैसे ही सत्ता में आई उसने सबसे पहला कदम ये उठाया। मतलब सच पूछिए तो बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने इसके माध्यम से यह इंडिकेशन दे दिया कि काला धन के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी जाएगी सरकार के द्वारा, उसमें किसी तरह की न तो कोई ढिलाई होगी और न कोई समझौता होगा। दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है, सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन होने में, करने में ये बहुत बड़ी बात है कि अभी की केंद्र सरकार को 3 साल हो गए हैं और आप देखें कि इन 3 सालों के दौरान, और इतनी इकोनॉमी एक्टिविटीज हो रही है, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हो रही है, नई नई पॉलिसीज आ रही है, सब कुछ हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। देखिए, छुटपुट छुटपुट कभी किसी नेता के अगेंस्ट, मंत्री के अगेंस्ट आ गई छोटी मोटी बातें, तो वो तो राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिशोध होता है, उसके तहत बातें कह दी जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि वो बात बहुत आगे बढ़े, डिस्कशन आगे बढ़े, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर उस आरोप के फेवर में, उस आरोप के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ऐसा आपको देखने में नहीं आया है। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है काले धन के खिलाफ। लेकिन चलिए, वो तो आचरण की बात है, चूंकि ये कदम नहीं है, ये तो जो मंत्री हैं उनके आचरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो हम उसे इस रूप में नहीं देख सकते। तो मित्रों, जो पहली बात हुई वो हुआ एसआईटी की जांच करना, ये गठन करना। दूसरा जो कदम था दोस्तों, वो कम बड़ा कदम नहीं था, वो कितना कारगर हुआ है हम नहीं जानते, इस पर अभी विश्लेषण चल रहा है, वो है डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। जो कुछ ही महीने पहले किया गया। विमुद्रीकरण को काले धन से क्या लेना देना था? देखिए, सीधी सी बात है कि जिनके पास काला धन होता है कई फॉर्मेट में होता है, जरूरी नहीं कि वो कैश में ही हो, गोल्ड के रूप में होता है, जमीन के रूप में होता है, जमीन जायदाद जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं उस फॉर्मेट में होता है, और तीसरा जो फॉर्मेट होता है वो कैश के फॉर्मेट में होता है। तो कैश के फॉर्मेट में भी ये बहुत ज्यादा होता है, गोल्ड चोरी चला जाएगा आप बैंक लॉकर में रखेंगे, ठीक है, बेनामी संपत्ति के रूप में आप रियल एस्टेट में रख सकते हैं, आपने जमीन खरीदी है, मकान खरीदे हैं, फार्म हाउस खरीदे हैं, पता नहीं कितनी संपत्तियां हैं अपने नाम से न रख कर लेकर के वो दुनिया दूसरे लोगों के नाम पर आप ले लेते हैं, होती वो आपकी है जिसे हम बेनामी संपत्ति कहते हैं। तो इन फॉर्म में काला धन अवेलेबल होता है। तो विमुद्रीकरण करने का मतलब था कि जब विमुद्रीकरण होगा तो जो बड़े नोट थे आपने देखे, बड़े नोट बंद किए गए 500 और 1000 के बंद कर दिए गए। अब आप बैंक ले जाएंगे तो या बैंक में बताइए कि आपके पास ये पैसा कहां से आया है, और अगर आप बताने की स्थिति में नहीं है तो आपका वो धन बेकार चला गया। और जो व्यक्ति काला धन अपने पास रखेगा वो छोटे नोट के फॉर्मेट में तो नहीं रखेगा, 10 20 और 50 100 के नोट तो नहीं रखेगा, वो 500 और 1000 के नोट रखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था काले धन को खत्म करने के लिए। अब ये बात अलग है फ्रेंड्स कि इसको लेकर के अभी डिस्प्यूट है कि वास्तव में काला धन कितना बाहर आ पाया या कितना बेकार चला गया, अर्थव्यवस्था से गायब हो गया, क्योंकि लोगों ने उन मुद्राओं को चेंज कराने के लिए अलग अलग रास्ते निकाल लिए, अलग अलग रास्ते निकाल लिए, है ना, कुछ जनधन खातों में पैसा जमा करके निकलवा लिया, कोई और रास्ते निकाल लिए, कुछ हवाला से जा रहा है, कुछ आपने उस समय खबरें पढ़ी होंगी कि बैंक के साथ मिलकर के और उसके नोट बदली करवा लिए, इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कुछ ने खूब गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, कुछ ने अपने खातों में भी जमा करके ये बता दिया कि हाँ ये यहां से आए हैं, हमारी सेल बढ़ गई थी। तो इन सारी बातों की जांच अभी हो रही है, तो फाइनल स्टेटमेंट अभी सरकार का आया नहीं है कि कितना काला धन इसकी वजह से बाहर आ गया, ये अभी स्टेटमेंट नहीं आया है सरकार का। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काला धन इससे खत्म नहीं हुआ होगा, नंबर एक। नंबर दो, इससे ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे तो लगता है जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत जबरदस्त संदेश है कि अगर आपने काला धन अपने पास रखा तो कभी भी वो जीरो हो जाएगा। तो लोगों में एक भय तो व्याप्त हुआ है, और ये बहुत बड़ी चीज है काले धन के समाप्ति की दिशा में, ये बहुत बड़ी चीज है कि लोग ये महसूस करने लगे कि हमारे पास ये धन जो है कभी भी धूल बन सकती है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जिससे पूरे देश के लोगों को गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स की सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं, मैं आपको छोटे छोटे कदम बता रहा हूं। जैसे बेनामी संपत्ति विधेयक आया है, आप देखिए, और एक बहुत बड़ी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोग रियल एस्टेट के माध्यम से अपने काले धन को कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आपने कोई भी संपत्ति दूसरों के नाम पर ले रखी है तो सरकार को हक है कि उस पर वो कार्यवाही करे और उसे वो जब्त कर ले। तो अब वो संभावनाएं खत्म हो गई कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरों के नाम से संपत्ति खरीद ले। ऐसा बहुत होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं होता, बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, बेनामी संपत्ति विधेयक आ गया। चलिए, रियल एस्टेट विधेयक को हम काले धन के अगेंस्ट नहीं मानते, वो रियल एस्टेट के कारोबार को एक नियमन का एक आधार मान लेते हैं। इसीलिए मैं स्पेशली ये बात कह रहा हूं कि आप जो रियल एस्टेट विधेयक है उसको काले धन के खिलाफ उठाया गया कदम मत मानिएगा। हाँ, बेनामी संपत्ति विधेयक जो आया है वो जरूर काले धन के खिलाफ उठाया गया कदम है। इसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स कि जब ये मोनेटाइजेशन का दौर खत्म हो गया तो सरकार ने कुछ और कदम उठाए। जैसे उन्होंने कह दिया कि जो 2 लाख रुपए से अधिक का जो लेन देन होगा उस पर सोर्स के समय ही टैक्स दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान किया जाए, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान, क्योंकि जब डिजिटल भुगतान होगा तो बट नेचुरल है कि उसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो तो अकाउंटेड मनी हो गया, उसका रिकॉर्ड है उसका। तो सरकार ने डिजिटल भुगतान को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया है, तो वो भी काले धन को थोड़ा सा प्रतिबंधित करने का एक छोटा सा ही उपाय सही, लेकिन है। जो पॉलिटिकल डोनेशन जो होता था दोस्तों, जिसे हम राजनीतिक चंदा कहते हैं, वो काले धन का बहुत बड़ा सोर्स था। आपको मालूम है कि बजट में यह प्रोविजन किया गया कि आप 2000 रुपए से अधिक का डोनेशन कैश में नहीं ले सकते, कैश में नहीं ले सकते। तो अब अगर आपको डोनेशन लेना है तो आपको चेक से लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति चेक से डोनेशन देगा उसको बताना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया। देखिए काला धन है क्या, आप बताइए कि पैसा कहां से आया। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो वो काला धन है, फिर पैसा कहां गया आप वो दिखाइए। और अगर आप चेक से देते हैं, आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे डिजिटल प्रणाली कह सकते हैं, तो रिकॉर्ड में है, आप उसके साथ फिर कोई खेल नहीं कर सकते। तो जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसके दिशा में जो ये कदम उठाया गया है, ये बहुत ही वेलकम किया गया है लोगों को। अब देखिए अब ये असर कितना हो सकता है, अब इसको देखते हैं। दो चीजें और की गई फ्रेंड्स जो काले धन को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी चीज थी और जिसके माध्यम से काला धन बहुत तेजी के साथ व्हाइट किया जा रहा था, यानी कि काला धन उससे जमा हो रहा था, काले धन को व्हाइट किया जा रहा था। और उससे ज्यादा खतरनाक होता है वो काला धन, काला धन रहे तो ठीक है लेकिन काला धन बिना टैक्स पे किए और व्हाइट हो जाए, सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसके लिए आप दो चीजें याद रखिए दोस्तों। सबसे पहला तो यह कि जिन्हें हम शेल कंपनी कहते हैं, छद्म कंपनियां, अब ये खूब न्यूज में आ रहा है। मैं अब शेल कंपनी के बारे में आपको यहां नहीं बताऊंगा प्लीज, लेकिन एक बार आप समझ लें कि आप झूठी कंपनी बनाते हैं और उसके माध्यम से आप अपने काला धन को सफेद करते रहते हैं। दुनिया भर की शेल कंपनी बनाई गई और उससे काले धन को सफेद किया गया। तो इनके ऊपर अब सीबीआई ने खूब छापे मारने शुरू किए हैं, उनसे हिसाब किताब पूछा जा रहा है। तो जो शेल कंपनियां बनाने वाले हैं अब अंदर से हिल गए हैं, इन पर प्रतिबंध लगेगा। और इसके साथ ही साथ आपको मालूम होगा दोस्तों कि मॉरिशस के साथ जो हमारी संधि हुई है उसमें संशोधन किया गया है, कर संधि में संशोधन किया गया है। पी नोट आपने सुना होगा, मैंने डेली ऑडियो लेक्चर में पी नोट के बारे में बताया है भी है कि पी नोट के जरिए मॉरिशस से होते हुए विदेशों से जो पैसा था वो मॉरिशस जाता था, मतलब भारत से काला धन मॉरिशस जाता था कह लीजिए, फिर मॉरिशस से भारत आ जाता था और भारत से जाता था काला धन, मॉरिशस से वो व्हाइट होकर के आ जाता था और फिर से हमारी इकोनॉमी में शामिल हो जाता था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए मॉरिशस के साथ जो संधि की गई है इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अब आसान नहीं होगा कि आप हवाला या पी नोट के जरिए काले धन को सफेद कर सके। एक कदम आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो जनधन खाते खोले गए, लगभग 28.5-29 करोड़ खाते खोले गए हैं, तो जनधन खाते खोलने से क्या होगा कि जो सब्सिडी का पैसा है जिसमें दुनिया भर का भ्रष्टाचार होता था, यहां तक कि छोटी छोटी मनरेगा जैसे मजदूरी में होता था, तो उस भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। देखिये जो भ्रष्टाचार है उसमें जो पैसा आया है वो काला धन ही है, तो जनधन खाते को भी आप इसके तहत एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कदम मान सकते हैं। और फ्रेंड्स एक आपको मालूम ही है कि आय घोषणा निकाली गई थी सरकार द्वारा, की गई थी 2016 तक कि आप अपने काले धन की घोषणा कर दीजिए, इसके बदले में आपको एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी और बाकी आपका जो धन होगा रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो व्हाइट हो जाएगा। और इसके तहत एक आंकड़ा मैं बताऊंगा जो आपको मालूम होना चाहिए कि 65,000 करोड़ रुपए लोगों ने घोषित किया, तो एक बड़ी रकम है। तो इसका भी असर डेफिनेटली कहीं ना कहीं काले धन को रोकने में होगा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए हैं जो सरकार ने अभी तक लिए हैं। ये चीजें समय समय पर होती रही हैं, बिखरी रही हैं, तो अब ये चूंकि एक जगह पर ये आ गई हैं तो आप मानकर चल सकते हैं कि यह डेली ऑडियो लेक्चर आपके लिए एक डेली ऑडियो नोट्स की तरह है। जैसे आप नोट्स बनाते हैं, आपको चाहिए कि अगर आप ठीक समझें तो इसे अपने पास सुरक्षित भी रख लें ताकि समय समय पर आप इसे दोहरा सके, सुन सके, और इससे आपका यह टॉपिक भूलने से आप बच जाएंगे, बिखरने से बच जाएंगे। कुछ न कुछ तो मददगार आपके लिए होगा ही, लेकिन इस टॉपिक को आपको लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।